نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تفسیر پہ جانے سے پہلے ہم آج کے سبق کا خلاصہ کریں گے. مرکزی خیال تھیم آف دا لیسن. ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ دین اسلام کے چار بنیادی حصے ہیں اور سورت بقرہ میں ان چاروں پہ بات ہوتی ہے گاہے بگاہے. آج کی جو آیتیں ہیں یہ ہماری عبادات اور معاملات سے متعلق ہے. شروع میں عبادات کی بات ہے لیکن بات میں اسی کے اندر شوہر اور بیوی کے تعلق کے ناطے سے کچھ بات ہے. اور جس عبادت کا آج ہم تذکرہ پڑھنے لگے ہیں اس کو اردو میں روزہ اور عربی میں صوم کہتے ہیں. تھوڑا سا سمجھ لیجئے روزہ کیا ہے کیسے ہے. پہلی بات یہ ہے کہ صوم روزہ اسلام کے اندر ایک پلر کی طرح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ نماز کی طرح اگر کوئی روزے کا انکار کرے. دیکھیے ایک ہے روزہ نہ رکھنا یا نہ رکھ سکنا, یہ اور بات ہے. کوئی یہ کہے کہ میں روزے کو دین میں لازم سمجھتا ہی نہیں یا آج کے دور میں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں, اگر کوئی شخص روزے کا انکار کر دیتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے نکلنے لگتا ہے اور اگر مسلم حکومت ہوگی تو اس کا دم بھی حلال ہوگا. ٹھیک ہے, اتنی اہم ہے. فائیو پلرز آف اسلام میں روزہ موجود ہے. صلات کہتے ہیں نماز کو, جس کا تذکرہ ہم نے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں پڑھا تھا. نماز صلات مکی صورتوں میں نماز کا ذکر کثرت سے ملتا ہے لیکن مکی دور میں صوم کا روزے کا ذکر نہیں ملتا, یعنی عبادت کے طور پہ تذکرہ نہیں ملتا. وجہ اس کی کیا ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے روزہ فرض نہیں تھا. کیسے تھا بھی اس کی تفصیل ساری خود بخود اپنی جگہ پہ آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آتے ہیں عرب, وہاں پہ لوگ دین ابراہیمی سے اتنا دور نکل چکے تھے کہ روزہ رکھنے کا تصور ان کے دین سے نکل چکا تھا. اگلا جملہ نوٹ کریں, یہ چھوٹے جملے پھر کہوں گی کہ لائنوں میں لکھا کریں, بعد میں آپ کے لیے یاد کرنے چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. یہ ہر نبی نے روزے رکھے, ہر شریعت میں روزے فرض تھے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا طریقہ, اس کی لینگتھ سٹائل بدلتا رہا. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں روزے فرض ہوئے اور ان کی قوم جو تھی وہ دو یا تین روزے رکھتی تھی. عربوں میں بھی چونکہ حضرت اسماعیل کی طرف سے دین ابراہیمی آیا تھا لیکن روزہ عموماً انسان کے نفس پہ بوجھل پڑتا ہے, تو جب دین میں اضافے شروع ہوتے ہیں نا تو لوگ مشکل چیزوں کو نکال دیتے ہیں. انہوں نے بھی یہی کیا, خود روزہ نہیں رکھتے تھے لیکن اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے. جی لکھیے پھر بتاتی ہوں. وجہ کیا تھی کہ اکثر عربوں کا پیشہ لوٹ مار تھا, ڈاکو تھے, غارت گری تھی, قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, وقفے وقفے سے ان کے بیچ میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور جنگ کے لیے ان کو گھوڑوں کی ضرورت پڑتی تھی کیونکہ گھوڑا تیزی سے چلتا ہے, بھاگتا ہے, بھاگ کے اس کی پوچھ پہ چڑھ جاتے ہیں, رات کو بھی گھوڑا چلنے کو تیار ہے. اونٹ تیز رفتار جانور نہیں ہے اور گھوڑے کے مقابلے میں اپنا رخ بھی جلدی نہیں پھیرتا. چنانچہ ان کی ضرورت تھی کہ اونٹ کی جگہ گھوڑے کو استعمال کریں. اب گھوڑے کے اندر اتنی خوبیاں تو موجود ہیں لیکن وہاں ساتھ ہی ساتھ گھوڑے کے بارے میں اگر آپ کبھی جانتے ہوں کہ یہ بڑا ہی نازک مزاج جانور ہے, تنک مزاج جس کو آپ اردو میں کہہ لیں, غصے میں بھی جلدی آتا ہے, اپنے مالک کو پچھاڑ دیتا ہے اور بہت جلدی بیمار بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ گھوڑوں کو ٹریننگ دینے کے لیے, تربیت کے لیے یا سدھانے کے لیے ان سے مشقت کرواتے اور ان کو بھوکا رکھتے. ان کے منہ پر ایک وہ چھکو سا نہیں ہوتا توبڑا, وہ ڈال دیتے تھے. جب وہ ڈالتے تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا اور اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے, یعنی گھوڑے کے منہ پہ کپڑا باندھ دینا تاکہ گھوڑا نہ کھا سکے, اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے. اور جس گھوڑے پر یہ عمل کرتے تھے اس کو صائم کہتے تھے, الصائم جیسے روزہ رکھنے والا. اس سے گھوڑوں کو بھوک پیاس برداشت کرنے کی عادت پڑ جاتی. اور ایسا کیوں کرتے کہ لڑائی کے دوران اگر گھوڑے کو بھوک لگ گئی اور وہ بیٹھ گیا تو جنگ گئی نا, तो गोया कि इससे वो उनको सख्त जान करते थे और इस तरह फिर सवार की जिंदगी को खतरा नहीं होता था। ठीक है, एक बात, एक तो था खाने से उनको दूर रखते थे, दूसरा क्या करते थे कि अरब की गर्मी का उनको आदी करते थे। घोड़ा असल में अरब मुल्कों में रहने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इनको अरब की गर्मी का यूज़ टू करने के लिए गर्मियों और लू में धूप में छोड़ देते थे। खुद भी जहर खड़ा होना पड़ता था तो अपने सर के ऊपर कपड़े बांध लेते थे, जिस्म पे कपड़े लपेट लेते थे ताकि हमें गर्मी ना लगे, लेकिन घोड़ों का मुंह धूप की तरफ, सूरज की तरफ कर देते थे ताकि खूब गर्म हवाएं इनको पड़े और भूख और प्यास को बर्दाश्त करने के आदी हो जाएं। और इस तरह से जब किसी मुहिम में उनको गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास बर्दाश्त करनी पड़े तो घोड़े कर सकें। ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के वक्त अरबों में रोज़े का तसव्वुर। इतनी बात वाज़ेह है। अब हुआ क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आ गए। मक्का में तो यही कुछ था, ठीक है, वहाँ कुफारे मक्का थे और उन्होंने रोज़े की ये कैफियत बना रखी थी। जब मदीना में आए तो मदीना के हालात थोड़े से फ़र्क थे, यहाँ यहूद मौजूद थे और यहूद के यहाँ रोज़ा रखने का रिवाज था क्योंकि वो अपने नबियों के नक्शे कदम पे चल रहे थे। वो क्या करते थे, 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे, आशूरा का रोज़ा कहते हैं जिसको आज भी। क्यों? क्योंकि उस दिन बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली थी। पीछे याद है, वइज़ फ़रकना बिकुमुल बहर फअंजैनाकुम, ठीक है, तो इस खुशी में ये रोज़ा रखते थे कि हम उस दिन फिरौन से निजात पा चुके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इब्तदा में हर महीने में 3 रोज़े रखने का हुक्म दिया, जिनको अय्यामे 20 के रोज़े कहते हैं, बा या दुआद, भाई ये सफ़ेद को कहते हैं ना, बैजा अंडे को कहते हैं, वही लफ्ज़ है। और ये कौन से दिन होते हैं, चांद की 13, 14 और 15, कौन से दिन होते हैं चांद के नाते से, ये फुल मून, बदर, खूब सफ़ेद। और इसीलिए इनको अय्यामे 20 कहते हैं कि इन दिनों की रातें भी रोशन होती हैं फुल मून की वजह से। ठीक है, इन 3 दिनों में रोज़े रखते थे। आज के इस सबक में हम देखेंगे इस रुकू की इब्तदाई 2 आयात में इसी की तरफ इशारा मिलता है। चूंकि रोज़ा नफ्स पे बोझल पड़ता है, अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ करने में तदरीज ग्रेजुअलिटी का एहतमाम किया। शुरू में लोग 3 रोज़े रखते रहे, 3 रोज़ों की आदत हो गई, होते होते फिर अगली आयतें उतरी, या मैं भी तफसीर में आपको लिखाऊंगी तो आप खुद भी समझ जाएंगे ये कहाँ बात हुई। सेकेंड स्टेप रोज़ों के बारे में इस्लाम के अंदर क्या गुजरा कि रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया, यानी 30 रोज़े, लेकिन ऑप्शन दे दी, और वो क्या थी, चाहो खुद रोज़ा रख लो चाहे किसी को रखवा दो। समझ गए? अब क्या हुआ, जो गरीब गुरबा थे वो तो खुद ही रखते थे, सख्त जान भी होते हैं ऐसे लोग, और जो हम जैसे बिगड़े हुए नरम मिजाज दौलतमंद लोग होते हैं, उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपने गुलामों को रखाना शुरू कर दिया। लेकिन वो कान में बात पड़ गई ना, यानी बीच में एक दौर ऐसा रोज़े की फर्जियत में गुजरा कि रोज़ा फ़र्ज था, लेकिन चाहो तो रोज़ा रख लो और चाहो तो तुम उसका कफारा दे दो। तो कुछ लोगों ने इस तरह से करना शुरू कर दिया। होते होते क्या हुआ कि लोग जब थोड़ा सा यूज्ड हो गए तो हतमी तौर पे आ गया, फमन शहिद मिनकुम अश्शहर फलयसुम, आज के सबक में आ रही है ये आयत, कि अब तुम में से जो भी इस महीने में हाजिर हो वो रोज़े रखे। ठीक है, तो इस वक्त मौजूदा सूरत रमज़ान के बारे में क्या है, साल में एक महीना जिसको रमज़ान का महीना कहते हैं, लफ्ज़ रमज़ान को भी समझ लीजिए, अल्लाह सुबहाना ताला ने जो ये 12 महीने रखे हैं ना, सूरह तौबा में तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, इन्ना इद्दत शहूर इंद अल्लाह 12 शहरा, लेकिन यहाँ इसका इशारा ज़रूरी है वरना बात समझ नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने रमज़ान के जो रोज़े हैं ये रमज़ान में ही फ़र्ज़ किए, महीने 12 हैं। जैसे आज मैं और आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, इसी तरह ये महीने कौन से होते हैं, ये सूरज के साथ चलते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, सोलर, यानी सूरज के साथ शमसी महीने। जो महीने चांद के साथ चलते हैं उनको क्या कहते हैं? कमरी, कमर, सुनर और लूनर। ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझिए फर्क को। 12 महीने जिसमें रमजान नौवां महीना बनता है, पहला महीना कौन सा है? किसको 12 महीने आते हैं? जरा पढ़े, सब पढ़े मिलके। मेरा ख्याल था आपको सिर्फ रमजान और जिलहजी आएगा, हाँ? ठीक है, अब ये 12 महीने थे। ठीक है, ये जो जनवरी फरवरी है ना, आपको पता है इसके पीछे क्या हकीकत है? ये इनके बुतों के नाम पे है। जूना एक बुत है जिसकी इबादत ये जून में करते हैं। बाकियों की भी हिस्ट्री सुननी है तो सुन लीजिएगा बाद में। ये जो मंडे संडे ट्यूसडे है ना, मंडे मूनडे, संडे संडे। मंडे को ये मून की पूजा करते थे, चांद की पूजा, मंडे को मून की, संडे को सन की। इसी तरह इनकी देवियों के ये नाम है। ये जितने नाम आज आपको वेस्टर्न कल्चर में दिखते हैं, जो अब हमारी मासियों के भी जुबान पे हैं, पाकिस्तान में भी, यहाँ की तो बात ही ना करें, वो भी कहती हैं भाजी संडे को नहीं आऊँगी, मंडे को तबीयत खराब हो जाएगी, ट्यूसडे को सोचूंगी, और वेडनेसडे को अगर दिल चाहा तो आ जाऊंगी। तो ये जो नाम है, रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? रौ मीम दुआद, रमदा, इसका मानी होता है पाँव जलना। रमजान का महीना जो है, जब शुरू हुए थे दुनिया के गिनती के दिन, तो गर्मियों में आता था। अब यहाँ हिकमतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि मुख्तसर से बात मुख्तसर करूँ, क्योंकि जब आप रमजान की बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी काफी चीजें आएंगी। अल्लाह ताला ने इसको कमरी कैलेंडर के साथ रखा। और एक और बात नोट कर लीजिए कि चांद के साथ चलता है ना कैलेंडर, और एक सूरज के साथ चलता है, जनवरी फरवरी, और दूसरे में दिनों का फर्क होता है। इसमें एक साल में कितने दिन होते हैं? जनवरी फरवरी में 365। जो चांद के साथ होता है ना, उसमें 355 होते हैं। ठीक है, फर्क किस बात का है? अभी देखें, जनवरी 30, फरवरी 28, मार्च 31। आप ये देखें, मैंने यहाँ से याद किया, मैं मुझे कभी नहीं याद होते, पता नहीं किसने बचपन में सिखाया था, आपको भी सिखाया होगा। ये जो ऊपर वाली कोनी है, ये 31 है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, ये दो मुसलसल हैं जिसमें, यानी 31 है, इसमें 31 और 30 हो जाते हैं ना, लेकिन चांद में 29 या 30 होते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या हिकमतें हैं, कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत पे प्यार आता है। एक सूरत क्या थी कि अल्लाह सुबहान ताला रमज़ान को एक वक्त पे फिक्स करते थे। जैसे आप देखिए कि मसलन जनवरी है, हर साल जनवरी में सर्दी ही होती है ना मोस्टली हमारे इलाके में, जनवरी फरवरी मार्च सर्दियाँ होती हैं। चले जून जुलाई अगस्त, पाकिस्तान इंडिया में रहने वालों के जहन में जून के साथ क्या लफ्ज़ आता है? गर्मी। ठीक है, अब होता क्या है कि रमज़ान मूव होता है। अगर आप देखें कि हर एक साल में शमसी और कमरी कैलेंडर में 10 दिन का फर्क पड़ जाता है, ये आप सबको भी पता है। हर साल रमज़ान 10 दिन बाद शुरू होता है हमारे, उसके पहले शुरू हो या बाद में, जो भी है, कहने का मतलब ये कि एक साल में 10 दिन का फर्क पड़ जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक बंदा अगर 33 साल की उसको अल्लाह ज़िंदगी दे, 33 ईयर्स के रोज़े रखेगा ना, तो उसको पूरे साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर दिन रोज़ा रखने का मौका मिल जाएगा। एक बात, अल्लाह सुबहाना ताला ने एक नेचुरल बांट रखी थी कि रमज़ान इस तरीके से आए कि घूम घूम के पूरे साल में बंदा रोज़ा रख ले, नंबर एक। दूसरी बात है कि दीन सिर्फ अरब के लिए नहीं आया था, दीन अगर सऊदी अरब में, अमेरिका में, तो ऑस्ट्रेलिया में भी है। और आपको पता कि नहीं पता, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया के इस हिस्से में जब सर्दियाँ होती हैं ना, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका में, कनाडा में, इधर यूरोप में, जनवरी फरवरी बहुत सर्दियों के महीने हैं, दिसंबर, ऑस्ट्रेलिया में पीक गर्मी होती है उन दिनों में, इधर क्रिसमस बर्फबारी में आती है, उधर क्रिसमस में लू चल रही होती है। अब दुनिया के मुख्तलिफ हितों में जो लोग रहते हैं, अल्लाह ताला क्या चाहते थे कि वो हर मौसम में अल्लाह की इबादत कर सकें। कभी की गर्मी के रोज़े, कभी सर्दी के रोज़े, कभी लंबे रोज़े, कभी छोटे रोज़े। तो अल्लाह ताला ने इसको इस तरह से जोड़ा कि ये रोटेट करे। अरब लोग, जो कह लें अपनी ज़ुबान में कि अपने दौर के बिगड़े हुए मुसलमान थे, उनको ये मुश्किल लगता था। वो चाहते थे कि बस एक फिट कर दें, रमज़ान हमेशा एक ही महीने में आए और हज का महीना एक ही आए, क्योंकि उनके लिए दीन जो था ना, एक रस्म बन चुका था। इबादत नहीं रहा था। वो हज को हमेशा सर्दियों में चाहते थे ताकि ज़्यादा लोग आएं, हमारी ज़्यादा बिक्री हो, कारोबार ज़्यादा चमके, कारोबार हो। लिहाजा वो हर 3 साल के बाद एक महीना नसी के नाम पे बढ़ा देते थे। अभी ना लिखिए, सिर्फ इंजॉय कर लें। ये हम सूरत तौबा में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि इन्नमा नसीउ ज़्यादतु मिनल कुफ्र, कि ये जो अल्लाह के फितरत के निज़ाम को घटाते बढ़ाते हो ना, कि इसको इधर से उधर कर दो, उधर से उधर, बड़ा कुछ करते थे। जैसे बिल्कुल इसकी मिसाल जो समझें कि जनवरी फरवरी मार्च हमेशा इसी तरतीब से आता है ना, ठीक है। तो इनका मसला क्या था कि जब भी कभी हुरमत का कोई महीना बीच में आ जाता था, आप पढ़ेंगे आगे जब, वहाँ वहीं बताऊंगी, 4 महीने ऐसे होते हैं कि जिसमें लड़ाई झगड़ा मना होता है। अब एक लड़ाई चल रही थी, अब उसमें 3 महीने मुसलसल भी आते हैं, तो जब ये लड़ना चाहते थे ना, तो कहते थे इस दफ़ा जी का जो है ना वो पीछे चला गया और जिलहज आगे आ गया, और इस तरह। या ऐसे ही कि मैं आपसे कहूँ कि आज अक्टूबर है, इसके अगला महीना कौन सा है और उससे अगला कौन सा है, तो हम कहें कि अच्छा जी देखिए ऐसा करते हैं कि इस साल ये अक्टूबर के बाद जो अगला ना ये दिसंबर है, और जब ये ख़त्म होगा तो जो असल में दिसंबर है उसको नवंबर बना लेंगे। तुक नहीं बनती। इस तरह की बहुत सारी इन्होंने तब्दीलियां की थी। अल्लाह सुबहाना ताला ने रमज़ान के महीने के नाते से इनके बहुत सारे गलत तौर तरीकों को तोड़ा। किस तरह से तोड़ा, आइए अब हम इसको देखते हैं कि इन आयतों के साथ साथ चलते हुए हमें इसमें से अपने लिए क्या सबक मिलता है। लेकिन अभी तक की बात में आपको जो बात समझ आ गई वो क्या है कि रमज़ान के रोज़े ग्रेजुअली फ़र्ज़ हुए। अल्लाह ताला ने पहले जहन साजी की, फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको रोज़े रखवाए। दूसरी बात यह कि रोज़े मौसम बदल बदल के आते हैं, कभी गर्मी के रोज़े, कभी सर्दी के रोज़े, ताकि अल्लाह ताला को बंदे दिखा दें कि हम हर मौसम में तेरी इबादत करेंगे। जो नेक बंदे होते हैं ना, वो कहते हैं कि अल्लाह हर मौसम में, हर हाल में तेरी इबादत करनी है, कोई महीना कोई मौसम ऐसा ना रह जाए कि जो तेरी इबादत से खाली हो। और जिनके ईमान कच्चे हैं वो कहेंगे कि अल्लाह करे कि बस हमेशा रोज़े सर्दियों में ही आए। आप सोचें कि रोज़े अगर सिर्फ सर्दियों में ही आने हैं ना, तो फिर आपको उससे फ़ायदा क्या होगा। आपको पता है कि आज तो साइंस ने इतना ज़्यादा हमें रोज़ों का और इन बाकी चीज़ों का फ़र्क बता दिया, हमारे जिस्म को कितना फ़ायदा है, गर्मियों के रोज़ों में कितनी खैर है, और सर्दियों के, और लंबे रोज़े और छोटे रोज़े के हैं, इसकी बेशुमार बातें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जब रमज़ान आएगा तो आप लोगों के कानों तक ये बातें टकराएंगे, आपको एक पूरी बुक भी पढ़ाएंगे। लेकिन आज हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ इन आयतों तक रहें, और खुलासे के अंदाज़ में पहले करेंगे क्योंकि लेसन बहुत लंबा है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो हमारे सामने आएंगी। इंशाल्लाह इसको एक स्ट्रेच में करके बाद में बाकी चीज़ों को इकट्ठा लेके चलेंगे। एक आधी बात नोट कर लीजिए कि यहाँ रोज़े के काम पर मुश्तमिल ये रुकू 6 आयतों पर मुश्तमिल है, ठीक है। और पूरे कुरान में नमाज का तذکرہ तो कई बार है, रोज़े का इसके अलावा कहीं नहीं। यानी अगर आज जो साथी छुट्टी पे है ना, वो बाद में कह देना कि पूरे कुरान में रोज़े की कोई बात ही नहीं आई, तो वो कह सकते हैं। यहाँ से देखिए कि एक दिन का सबक मिस होता है तो कितनी बड़ी बात है। इजमाली जिक्र मिल सकता है कहीं ना कहीं इशारतन, लेकिन अहकाम और ऐसी चीज़ों पर कुछ नहीं मिलता। और इस जगह यहाँ ये भी पता चलता है कि एक ही जगह सारी बात करके अल्लाह ताला ने उसकी हिकमत को बता दिया।